आपको ये बताया गया कि आपको पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे करें प्रायश्चित? आपको मालूम है, मैं हम कुछ घटनाएं सुनाते हैं आपको। अम्बपाली ने प्रायश्चित किया। अम्बपाली ने सैकड़ों आदमियों की जिंदगी खराबें की, कुमार्ग पर चलाया, बहुत सारा धन कमाया, और उस पाप से निजात पाने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में गई। भगवान की बुद्ध में भगवान बुद्ध ने शरण में तो ले लिया, मंत्र तो दे दिया, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा पिछले जो गुनाह है उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति का केवल मंत्र लेने से या जप करने से रास्ता थोड़ी खुलेगा। अम्बपाली ने कहा ठीक है, तो मैंने जो कुछ भी गुनाह किए हैं उस गुनाहों के मैं दो तरह के सजा भुगत हुए। जो कुछ भी पैसा मेरे पास इस अनिति का कमाया हुआ है, इस सारे के सारे पैसे को मैं दुनिया में ज्ञान की संवर्धन करने के लिए खर्च कर दूंगी। उसने उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, वो ला करके भगवान के बुद्ध के चरणों में रखी और ये कहा जिस तरीके से मैंने अनेकों को गुमराह किया है, आप इन अनेकों को अच्छे मार्ग पर लगा देने के लिए इस पैसे को खर्च कर डालिए। बस ऐसा ही हुआ। भगवान बुद्ध ने अम्बपाली की करोड़ों रुपए की संपत्ति से बुद्ध विहार बना दिए, उसमें से धर्म प्रचारकों को शिक्षण का प्रबंध कर दिया। बस उससे एक तरीके से जो अनिति का धन था वो सन्मार्ग पर लग गया, प्रायश्चित का एक सही और ईमानदारी का तरीका। यही तरीका एक और ने भी किया। किन्ने किया? दूसरे का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने अपने जिंदगी में बहुत हत्याएं की थी, कितनों के कत्ल किए थे, और कत्ल कमाने के बाद में बहुत सारा धन कमा लिया। बहुत धन था उसके पास। भगवान बुद्ध का शिष्य होने के लिए आया, मंत्र मांगने के लिए आया, तो उन्होंने भगवान ने मजाक में ये कहा, अच्छा आप तो मंत्र जप करके सर को जाने की फिराक में फिरते मालूम पड़ते हैं। हाँ साहब, हमने सुना है कि कोई मंत्र जप कर लेता है, राम नाम ले लेता है, तो वैकुंठ हो जाता है। भगवान बुद्ध बहुत हंसे, उन्हें कहा जिस आदमी ने आपको ऐसी सलाह दी है वो बड़ा पागल आदमी मालूम पड़ता है, और आपने ऐसे विश्वास कर लिया आप उससे भी ज़्यादा पागल मालूम पड़ते हैं। आप नाम नाम का जप करने से या किसी शब्द का उच्चारण करने से अथवा देवी देवता के नाक रगड़ने से अथवा किसी क्रियाकृति को पूरा करने से आध्यात्मिकता का लक्ष्य प्राप्त करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। आप ऐसे कीजिए, जो गलतियाँ की हैं इनको बराबर कीजिए, खाइयों को पाटिए। क्या खाई पाटें? जो आपने धन कमाया है अनीति से उसको खर्च कर डाले। बस उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने किया। अंगुलीमाल के पास भी बहुत संपत्ति थी, करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उसको भी ऐसे खर्च ऐसे ही किया गया। भगवान बुद्ध ने सारे संसार भर में, सारे संसार भर की भाषाओं में, उनकी भाषाओं में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को अनुवाद कराने और उन ग्रंथों को बाहर नावों में रख रख करके देश विदेशों में भेजने के लिए उपक्रम किया, और अंगुलीमाल का सारा धन उसमें खर्च हो गया। धन खर्च हो गया ना, और धन के अलावा भी तो कुछ किया था ना। हाँ, और क्या किया था? उनका ईमान खराब किया था ना, चरित्र खराब किया था ना, दुख और दर्द की आग में धकेल दिया था ना। कितने आदमियों को कत्ल करने के बाद में कितनी आत्माओं ने चीत्कार किया होगा, वो पैसा ही तो चुका दिया, और वो उसका क्या हुआ? अम्बपाली ने अपने भावी जीवन को भूतकाल की खाई को पाटने के लिए समर्पित कर दिया। वो संत हो गई, संत हो गई, और संघमित्रा की तरीके से सारे एशिया में और सारे हिंदुस्तान में गांव गांव घूमती फिरी, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, सत्कर्म की शिक्षा देने के लिए। इस तरीके से उन्होंने न केवल अपने धन को उस्तर कर दिया, बल्कि अपने समय को और पसीने को भी उसी में खर्च कर दिया, जिस जो उत्साह उन्होंने बुरे कर्म करने में, गंदी जिंदगी जीने में लगाया था, वही उत्साह उन्होंने भावी जीवन को पुनीत और पवित्र बनाने के लिए खर्च करने में भी इकट्ठा कर लिया। जो काम उन्होंने, जो श्रम और जो समय उन्होंने पाप कमाने के लिए खर्च किया था, वही श्रम और समय उन्होंने पुण्य कमाने के लिए खर्च कर दिया। मैंने बताया ना आपको अम्बपाली का जीवन चरित्र, पढ़िए कितना शानदार, कहता शानदार बुरे कर्मों का जीवन और कितना शानदार अच्छे कर्मों का जीवन। न केवल उन्होंने पूजा पाठ किया, बल्कि उन्होंने अपने शरीर के श्रम के द्वारा समाज में सत्प्रवृत्तियाँ बढ़ाने के लिए घनघोर तप किया और पूरी पूरी मेहनत से काम लिया। जो उनके पास संग्रह था उसको भी उन्होंने खर्च कर डाला, प्रायश्चित हो गया। अम्बपाली सच्चे अर्थों में संत हो गई। अंगुलीमाल को भी ये करना पड़ा। انگلی مال کے بعد جو کمایا ہوا تھا وہ تو انہوں نے خرچ کر ہی دیا. بودھ دھرم کے گرنتھوں کو سارے وشو کی بھاشا میں انواد کرانے کے لیے. پر دھن سے ہی تھوڑی کام چلتا, دھنی دھن تھوڑی اپرن کیا تھا. انہوں نے کتنی آتما کو دکھایا بھی تو تھا, کتنا کو کمار کے راستے پر دھکیلا بھی تو تھا. اس کا پرائشت یہ ہو سکتا تھا کہ اپنا سمے اور شرم بچے ہوئے جیون کا اسی کام میں خرچ کر دیں. ویسا ہی ہوا, ویسا ہی ہوا. انگلی مال بھی ایک سنت ہو گئے اور سنت ہو کر کے سارے سنسار بھر میں, سارے سنسار بھر میں کام کرتے رہے اور چلتے رہے. برابر یہ ہوا, یہ پرائشچت کے یہی طریقے ہیں. اس سے کم میں کوئی پرائشچت کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اس سے آپ اپنا سمے دان نہیں دیں, ازدان نہیں دیں, چھتپورتی نہ کریں تو پھر کیا ہوا؟ یہ پرائشچت کا مخول ہوا, دلگی بازی ہوئی اور بدھی کی ویوستھا کے ساتھ میں اپہاس ہوا. بھگوان کے یہاں کوئی نیم نہیں ہے. پاپ کرنے والے اگر ہاتھ پاؤں جوڑیں گے, ناک رگڑیں گے, پوجا کریں گے, پنچامت پئیں گے تو کھما ہو جائیں گے. پھر بھگوان کی دنیا میں نیم کہہ رہا تو ویوستھا کہاں رہی؟ پھر ایسے ہی لوگ کر لیا کریں گے, پاپ کیا کریں گے اور بس پرارتھنا پوجا کر لیا کریں گے, پنچگوی پی لیا کریں گے, ڈبکی مار لیا کریں گے, پھر پاپوں کے دن تو کچھ رہے گا ہی نہیں. اس سنسار کی ویوستھا کو کون قائم رکھے گا؟ اب ایسا مت سوچیے. کیول ماتر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اس کو اس کے لیے کرنا ہے. چندران ورت جس کا لگ بھگ آپ یہاں کام کر رہے ہیں, یہ چندران ورت کا ایک ڈھنگ ہے جو آپ کو کرایا گیا ہے. کلپ سادھنا چندران میں بھی ان کو کم کرنا پڑتا تھا, آہار کو کم کرنا پڑتا تھا, بھوجن پر نینترن کرنا پڑتا تھا, سواد کی روک تھام کرنی پڑتی تھی, وہی آپ کو کرنی پڑی ہے. دونوں ایک ہی بات. اس لیے آپ کو یہ پراشت کرنے کے ساتھ ساتھ میں, پرتیکشا کرنے کے ساتھ ساتھ میں اب ایک نیا کام شروع کر دینا چاہیے. کیا شروع کر دینا چاہیے؟ پاپوں کا پراشت, سمیدان. سمیدان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سمیدان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس وشے میں ایک پرانی بہت شاندار پرمپرا ہے, تیرتھ یاترا کرنی چاہیے. پاپوں کے لیے تیرتھ یاترا, تیرتھ یاترا, تیرتھ یاترا, تیرتھ یاترا, تیرتھ یاترا. آپ دیکھ لیجیے کہیں بھی پراشتوں میں آپ پتہ لگا لیجیے تیرتھ یاترا کرنی چاہیے. تیرتھ یاترا کیا ہوتی ہے؟ تیرتھ یاترا کہتے ہیں دھرم پرچار کی پد یاترا, دھرم پرچار کی پد یاترا. تیرتھ یاترا اس کا ارتھ یہ ہے گاؤں گاؤں گھومنا, جگہ جگہ جانا, لوگوں کو اچھے اپدیش کرنا. پراچین کال میں گو ہتیا جب ہو جاتی تھیں تو لوگ گائے کی پونچھ لے جا لاٹھی سے باندھ کے گاؤں گاؤں گھومتے تھے منہ ڈھک کر کے, اور یہ کہتے تھے ہم سے گائے کی ہتیا ہو گئی ہے اور ہم کلنکی ہیں, ان کو کلنک لگ گیا ہے. اپنی پاپوں کو گاؤں گاؤں بتاتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے ہم نے غلطی کی ہے, آپ میں سے کوئی نہ کرنا. ہم نے غلطی کے ساتھ میں غصے میں آ کر کے گائے کے ساتھ حملہ کیا, اس کو مار ڈالا, آپ ایسا نہ کرنا. یہ اپدیش بھی کرتا تھا اور اپنی غلطی کو بتاتا بھی تھا. آپ کو یہی کرنا چاہیے. آپ کو ہر جگہ جا کر کے تیرتھ یاترا کے روپ میں پد یاترا کرنی چاہیے. پد یاترا کے روپ میں گاؤں گاؤں گھومیے. پد یاترا کا ایک روپ, تیرتھ یاترا کا ایک روپ ابھی بھی ودیمان. آپ کی طرف کیا رواج ہے مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں, لیکن اپنے یہاں یو پی میں ایسا رواج ہے کہ شیوراتری کے سمے پر لوگ گنگا جل چڑھانے کے لیے لاتے ہیں گنگا جی سے, اور اپنے یہاں کے آس پاس کے کسی دیوالے پر کچھ چڑھاتے ہیں, کانور رکھ کے لاتے ہیں, کندھے پر کانور لاتے ہیں. کانور لا کر کے چلنے والے راستے بھر اچھے گیت گاتے جاتے ہیں, اچھے دوہے سناتے جاتے ہیں, راستہ گیروں کو ہر بار شکشا دیتے جاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں جو چپ چاپ نہیں نکلتے, وہ جہاں بھی راستہ میں گیر ملتے ہیں, جہاں بھی لوگ گاؤں میں پرویش کرتے ہیں, وہ اچھے دوہے, جان کے دوہے, بھکتی کے دوہے, بیراگی کے دوہے, کرتے پالن کے دوہے سناتے چلتے ہیں. اس لیے ان کا دھرموپدیش بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, پد یاترا بھی چلتی رہتی ہے, جن سمپرک کا کاریہ بھی ہوتا رہتا ہے. جن سمپرک ایک, پد یاترا دو, دھرم پرچار تین. ان تین باتوں کو ملا دیں تو آپ کی سچی ارتھوں میں تیرتھ یاترا ہو جائے گی. اور یہ اس سمے جو ہے بھائی صاحب, اس سمے والی کا تو میں کیا کہوں آپ سے, یہ تو اب بھگدڑ ہے, یہ پریٹن ہے, خالص پریٹن ہے. پریٹن کے لیے دیش ودیشوں میں لوگ گھومنے جاتے ہیں, گھوکر لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, یہ دیکھنے جاتے ہیں. درشن کرنا کہاں آتا ہے؟ درشن کرنے کی بدھی کہاں ہے؟ کیول دیکھنے جاتے ہیں. بدری ناتھ کا کھلونا, جگن ناتھ کا کھلونا, فلان جگہ کا کھلونا, مندروں میں رکھے ہوئے جگہ جگہ کے کھلونے دیکھنے جاتے ہیں. درشن کو کہاں سے ہے؟ فلاسفی کو کہاں سے ہے؟ دیکھنے کی درشٹی کہاں ہے؟ درشن کے لیے درشٹی چاہیے. دیوی درشٹی دی تھی شری کرشن بھگوان نے ارجن کو. ارجن کہتا تھا हमको भगवान का रूप दिखा दिए, तो उन्होंने कहा पहले दृष्टि तला देख कैसे रहे, ईसा हम देख लें तो हम हैं तो सही भगवान देख ले, ईसा आप नहीं हैं, हम तो भगवान देखना चाहते हैं, तो फिर दृष्टि निकाल। दृष्टि से दर्शन होता है, इनके पास दृष्टि जो नहीं है इनको घुमक्कड़ कह सकते हैं, घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ से क्या फ़ायदा है, ठीक है इतना ही मनोरंजन है, अच्छे यहाँ यहाँ वहाँ न गए, कलकत्ता मुंबई न गए बद्रीनाथ हुआ, एक कोई फर्क बिल्कुल फर्क नहीं, एक व्यक्ति पर फर्क नहीं, दोनों की घूमने की फिरने की ये आवश्यकता और उत्सुकता पूरी होती है, समय भी होती है। तीर्थ यात्रा का पुण्य कैसे मिलने वाला है, तीर्थ यात्रा के पीछे तो कुछ उद्देश्य जुड़ा हुआ है, कुछ क्रिया जुड़ी हुई, क्रिया का अर्थ यह है कि आपको धर्म प्रचार की पदयात्रा में संलग्न होना चाहिए, धर्म प्रचार की पदयात्रा में अगर संलग्न है तो आपकी तीर्थ यात्रा मानी जाएगी। प्राचीन काल के ऋषि ही कहते थे घर घर अलख जगाते थे, अलख क्या, अलख ऐसे कहते थे घर घर दरवाजे पर खड़े होते थे और गीत गाते थे, एक आदमी हो तो एक, नहीं तो दो हो तो दो, अलख जगाना कहते हैं। हर आदमी जो घर के निवासी थे दरवाजे पर निकल के बाहर आते थे, उनकी बात महात्मा जी की सुनते थे, गाना हो तो प्यार उपदेश हो तो क्या, ये अलख जगाना कहते हैं। घर घर जाना, संपर्क बनाना, घर घर जाना, आपके पास आएंगे, आपके पास नहीं आ सकते लोग, बादलों के पास खेत कैसे आ पाएंगे बताइए, खेतों में इतनी सामर्थ्य होती तो फिर आप क्यों क्यों किसी का इंतजार करते, बादलों को ही जाना पड़ेगा, घर घर आपको ही जाना पड़ेगा, आपके पास नहीं आएंगे। दुर्घटना से घिरे हुए आदमी किस तरीके से आपके पास आए जरा बताइए, सही इसकी टांग टूट गई है, इसको एक्सीडेंट हो गया है, आइए साहब हमारे यहाँ आइए और प्रार्थना पत्र लिखिए और हमसे अर्जी कीजिए तो हम आपकी सहायता करेंगे, इतनी हैसियत होती तो बेचारा टांग टूटा हुआ क्यों होता, तब तक घुड़सवार ना होता, घुड़सवार नहीं है, टांग टूटा हुआ आदमी वो चल नहीं सकता, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा। बाढ़ आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और कोई मुसीबतें आती हैं, भूकंप आते हैं, महामारी फैल जाती हैं, तो सेवाभावी लोग ये इंतजार नहीं करते कि वो लोग दुखी लोग हमारे पास आएँ और अर्जी दें और हमसे प्रार्थना करें, ना आपको ही भाग के जाना पड़ेगा और दौड़ना चाहिए, हवा अपने आप भाग करके जा पहुँचती है हर आदमी की नाक में घुस जाने के लिए, सूरज की रोशनी हर आदमी के पास अपने आप चली जाती है, अपने आप चले जाने के बाद में उसको गर्मी दे करके आती है, रोशनी दे करके आती है, आपको सूरज की तरीके से, हवा की तरीके से और बादलों की तरीके से उन सभी जगह पर जाना चाहिए जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, पिछड़े हुए आदमियों को भी ज़रूरत है और प्रगतिशीलों को उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। पिछड़े आदमी एक ढंग के बेहूदे और पढ़े हुए आदमी दूसरे ढंग के बेहूदे, इनमें इनमें कोई ख़ास फर्क नहीं है, चर्च की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, आदर्शों की दृष्टि से सारी समाज लगभग एक ही स्तर पर जा पहुँचा है, इसमें धनी और निर्धन का भेद करना मुश्किल है, इसमें पढ़े और बिना पढ़े का भेद करना मुश्किल है, जहाँ तक जहालत का संबंध है, जहाँ तक दुर्भावनाओं का संबंध है, दोनों ही क्षेत्र अपने आप से बाजी मारने पर तुले हुए हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा कमा लेते हैं, बिना पढ़े कम कमा पाते हैं, बात अलग है, पढ़े आदमी ज़्यादा चालाक होते हैं और बिना पढ़े कम चालाक होते हैं, ये बात अलग है, पढ़े आदमियों के पास अच्छे महल मकान और पैसा तिजोरी होती हैं, गांव वालों के पास फटे टूटे कपड़े होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जहाँ तक चरित्र का संबंध है वहाँ तक दोनों एक ही स्तर के हैं, इसीलिए हम और आप में से हर आदमी को जिनको प्रायश्चित करने की बात हो तीर्थ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए, घर घर जाना चाहिए, किसके लिए, जनसंपर्क के लिए, जनसंपर्क किसके लिए, धर्म धारणा जागृत करने के लिए, विचार क्रांति के लिए, जनमानस का परिष्कार करने के लिए, लोकमानस में आदर्शवादिता की प्रतिष्ठापना करने के लिए, यही उद्देश्य होना चाहिए। घर घर आप जाएंगे किसके लिए जाएंगे, भीख मांगेंगे घर जाके, ऐसा भीख तो नहीं, घर घर जाएंगे ऐसी बीड़ी का प्रचार करेंगे नहीं, ऐसे आप जाकर के घर घर एक उद्देश्य के लिए जाइए, गाँव गाँव एक उद्देश्य के लिए जाइए कि हमको जन जागरण का हवा पैदा करनी है, तीर्थ यात्रा का यही उद्देश्य, इसके लिए पैदल चलना पड़ता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रास्ते में मिले, उनके संपर्क में बनाएं, आपको भी ऐसी ही तीर्थ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। आप यहाँ से जाएं तब, यहाँ से जाएं तब आप एक योजना बना के ले आइए कि हम किस तरीके से एक लंबा सफ़र करेंगे और इसमें से किस तरीके से अधिक से अधिक लोगों के साथ में मिलेंगे और उनको अच्छी नसीहतें देंगे, इसका एक ही तरीका है, आप साइकिल यात्रा पदयात्रा ही मैं कहता हूँ से, साइकिल को तो मैं एक वो मानता हूँ वजन ढोने का, वजन ढोने का है, आपको बिस्तर लेके चलना पड़ेगा, कपड़े लेके चलने पड़ेंगे, साइकिल पर लाद के लेके चलिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है, और क्या करें, और आप ये कीजिए जगह जगह शिक्षण देने के लिए, अलग जगाने के लिए एक योजना बना के ले आइए, दीवारों पर आदर्श वाक्य खड़िया मिट्टी से लिखने की आदत डालिए, उससे आप असंख्यों आदमी को रास्ता चलते आदमी को प्रेरणा दे सकने में समर्थ होंगे। आदर्श वाक्य लिखिए दीवार, ये भी एक प्रायश्चित का तीर्थ यात्रा का तरीका है। और क्या काम करें, यहाँ के शिविरों में थोड़ा संगीत सिखाया जाता है, ढपली पे गाना, स्ट्रीट सिंगर, सड़क पे खड़े होकर गाने वाले स्ट्रीट सिंगरों की एक नई पीढ़ी और नई पौध हमने लगाई है, आप भी उसमें शामिल हों। पर एक आदमी या दो आदमी लेकर के ढपली खंजरी लेकर चले जाएँ, किसी गांव के लोग को कहीं भी इकट्ठा कर लें, या प्याऊ है वहाँ पानी पीने के लिए जा बैठें, ढपली बजाने लगें। बस में सफ़र करना है, आप बस में सफ़र करने के लिए चल सकते हैं, रास्ते में बैठे हुए दो आदमी आप हैं या अकेले हैं, एक अच्छा वाला भजन गाना शुरू कर दीजिए, लोगों के दिल में एक नई गुदगुदी पैदा कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके अलावा भी हैं। आप कहीं जाकर के प्रज्ञा पुराण की कथा कह सकते हैं, रात को सत्संग की प्रबंध कर सकते हैं। इस तरीके से आप में से हर एक आदमी को, जहाँ ज्ञान की दृष्टि से हर आदमी बेअकल आदमी, हर बेअकल आदमी पढ़े और बिना पढ़े का फर्क मत कीजिए। जहाँ तक चरित्र का सवाल है, चिंतन का सवाल है, आदर्श का सवाल है, सब लोग एक जैसे हैं, इसलिए आपको शिक्षण करने में फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसको कहें किसको न कहें, किससे कहना चाहिए किससे नहीं कहना चाहिए, आप किसी से भी कहिए। हर आदमी इस मामले में दरिद्र है, हर आदमी को आपके ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए आपको तीर्थ यात्रा की योजना बनानी चाहिए। संभव हो सके तो अपने घर से चलिए, हरिद्वार के लिए चलिए, मथुरा के लिए चलिए, ये भी दो गायत्री के बड़े तीर्थ हैं। दर्शन करने के लिए तो तीर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे तीर्थ जिसमें कि प्रेरणा मिलती हो कहीं नहीं है। तीर्थों का बड़ा महत्व है, तीर्थों में जाकर के प्रायश्चित की बात बताई गई है, लाखों आदमी अभी भी जाते हैं, प्रायश्चित की विधि पूरी करते हैं, मुंडन संस्कार कराते हैं, तीर्थ में स्नाते हैं, वहाँ जाकर के गौदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं। ये सब बातें ये बताती हैं कि तीर्थ यात्रा का स्वरूप क्या होना चाहिए था। तीर्थ यात्रा से पाप कटते हैं, अर्थात पापों का खामियाना पूरा होता है। कैसे, मैंने बताया ना, आपको जनसंपर्क साधना चाहिए और जन जन के पास अलग जगानी चाहिए। इसके अलावा तीर्थ यात्रा में और भी कई महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं, बहुत और भी कई महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। आप कुछ समय एकांत में रहकर के अपने प्रायश्चित कीजिए, साधनाएँ कीजिए, उपासनाएँ कीजिए, आत्म परिष्कार के लिए पृष्ठभूमि बनाइए। कैसी पृष्ठभूमि, जैसे कि तीर्थों में बनाई जाती थी। तीर्थों में प्राचीन काल में दो तरह के लोगों के शिक्षण का प्रबंध था, एक बच्चों का शिक्षण जिनको गुरुकुल कहते, गुरुकुलों में गुरुकुल सब जितने भी गुरुकुल थे तीर्थ स्थानों में बने हुए थे, तीर्थ स्थानों की वैसे गुरुकुल बनाए गए अथवा गुरुकुल बनने से तीर्थ बन गए, ये बात तो बहस करने का ये समय ऐसे ही बाद में पढ़ने का नहीं है, दोनों एक ही बात थी। प्राचीन काल में जहाँ थी गुरुकुल भी थे, या गुरुकुल थे उसको तीर्थ बना दिया गया था। राजस्थान का वनस्थली बालिका विद्यालय को हम तीर्थ कहते रहे हैं, बाबा साहब आमटे के अपंग चिकित्सालय को हम तीर्थ कहते रहे हैं। तीर्थ पहले थे, पहले तो नहीं थे, पर अब अच्छे वृत्तियों से तैयार हो गए, अथवा प्राचीन काल में भी अगर बने थे तो किसी श्रेष्ठ कारण से बने हुए थे। आप हरिद्वार की तैयारी कर सकते हैं और आप मथुरा की गायत्री तो हम जाने की तैयारी कर सकते हैं। साइकिल से आप चलें, गांव-गांव जाएं, घर घर रुकें, गांव-गांव जाएं, दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखें, ढपली से गीत और संगीत सुनाएं, रात को भोजन की व्यवस्था करें, यज्ञ वगैरह की बात सोचें, अच्छे साहित्य को लोगों तक पहुँचाने का इस बीच में प्रयत्न करें वगैरह। बातें ऐसी हैं कि जिससे जनजीवन में नवचेतना भरने का संचार का मौका मिलता है और आपको सेवा करने का, श्रम करने का, त्याग करने का, उदारता दिखाने का मौका मिलता है। ये तीर्थ यात्रा के पीछे ही उद्देश्य था। मुंडन कराते थे तीर्थों में जाकर के, इसका मतलब ये था कि हमने अपने पुराने विचारों को बदल दिया है, बालों को, मस्तिष्क के ऊपर उगे हुए बालों को अपने कुविचारों का प्रतीक मानते थे और प्रतीक मान करके ऐसा करते थे, उनको मुंडन के माध्यम से उतार के फेंक देते थे, अर्थात ये विश्वास करते थे कि हमारे पुराने संग्रहित दुर्विचार कुसंस्कारों को हमने हटा दिया, तो हम नई जिंदगी जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यही था तीर्थ, इसके लिए अभी भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। शास्त्रकारों ने इतना ज़्यादा तीर्थों का महत्व बताया है, इतना महत्व बताया है कि शायद और किसी तीर्थ और किसी पुण्य फल का نہ بتایا نہ ہو, تیرتھ اوش جانا چاہیے, تیرتھ اوش جائیں. مسلمان دھرم میں بھی ایسا ہے, مکہ کو ایک بار زندگی ضرور جانا چاہیے. ہندوؤں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ تیرتھ یاترا ضرور کرنی چاہیے, پر تیرتھ یاترا ادیشیہ پورن ہونی چاہیے. تیرتھ یاترا میں راستے میں جن جیون کو جگانے کے لیے, الگ جگانے کے لیے پریاس, گاؤں گاؤں ٹھہرنے کا پریاس, طریقہ نمبر ایک. طریقہ نمبر دو یہ ہے کہ جہاں آپ جس تیرتھ میں نواس کریں وہاں کچھ دن نواس کیجیے, سادھنا کیجیے, تپشچریا کیجیے, اپاسنا کیجیے, اور ایسے واتاورن اور ستسنگ میں رہیے جس سے کہ آپ پچھلے والے گھنوں نے بھوت کال کو چھوڑ کر کے اجل بھوشیہ میں پرویش کرنے میں سمرتھ ہو سکیں. یہ کام واتاورن سے تعلق رکھتا ہے, یہ کار رشیوں کے سانندھی سے تعلق رکھتا ہے, یہاں یہ کار پرانمان پرکریا سے تعلق رکھتا ہے. تیرتھوں میں ساری باتیں کی سویدھا ہوتی تھی, اسی لیے لوگ تیرتھوں میں جاتے تھے اور وہیں نواس کرتے تھے. انوشٹھان تو اپنے گھر رہ کے بھی کیا جا سکتا ہے, پر اچھے واتاورن میں لے کر کے انوشٹھان کرنا بات ایک, اور گھنونے واتاورن میں, بکھڑے چھنٹے کے واتاورن میں, کام باسنا کے واتاورن میں, لوگ اور موہ کے واتاورن میں آپ رہ کر کے کر بھی لیں تو وہ ایک چند پوجا سے اچھی ہو جائے گی. واتاورن کا بھی بڑا مہتو تھا, اس لیے پراچین کال میں تیرتھ یاترا کے لیے واتاورن کو بھی دیکھا جاتا تھا. رشیوں کا سانندھیہ, سادھنا کا اپکرم, ساری باتیں اس میں ہوتی تھیں. آپ یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ آپ یہاں جو کلپ سادھنا شبر میں آئے ہیں, ایک مہینے کا تیرتھ سیون ستر میں آئے ہیں. یہ تیرتھ سیون ستر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تیرتھوں میں ایسی پرمپرا ہوتی تھی, ابھی بھی ایسا ہوتا ہے, ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. پریاگ میں ترونی تر کے اوپر ماگھ کے مہینے میں اس سے ملتا جلتے شبر ہوتے ہیں, ستر ہوتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں. ایک مہینے تک ترونی تٹ کے بیچوں بیچ بالوں میں لوگ جھونپڑی ڈال کے رہتے ہیں, پورا ایک مہینے اسی میں رہتے ہیں, نہ کہیں باہر جاتے ہیں, نہ کہیں باہر آتے ہیں, نہ کسی کو آنے دیتے ہیں, نہ کسی کو گھر گرہستی کی چنتا کرتے ہیں, اپنی ہی چنتا میں, آتم کلیان کی چنتا میں ڈوبے رہتے ہیں. اور لوک کلیان کی, آتم کلیان, لوک کلیان, آتم کلیان, لوک کلیان, گھر گرہستی سے جڑے ہوئے سمبندھوں کے بارے میں ایک مہینے کے لیے بیراگی ہو جاتے ہیں. گھر والوں سے کہہ دیتے ہیں گھر گرہستی کے سماچاروں کی چٹھی پتری مت ڈالنا, ایسی جال جن جان کا خبر مت دینا, کوئی دقت پریشانی آ گئی ہو تو اپنے ڈھنگ سے حل کرنا, ہم تک جانا مت, اور ہمارے تپ میں بگن مت ڈالنا. گھر والے بھی ان کی بات کو دھیان رکھتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے تو کوئی سامان کی کمی سنا ہی پوچھتے ہیں, کوئی سامان کم پڑتا ہے کیا, ہم کو کوئی چیز چاہیے کیا, بس کوئی چیز چاہیے اس سے معلوم کر لیا ان کو دے آئے. باقی وہ سارے کے سارے تیرتھ یاترا کی واتاورن میں پریاگ کی تبھی تک پر گزارا کرتے ہیں. آپ بھی اسی طرح سے مان کے چلیے, آپ کو اپنی منسٹھی ٹھیک کرنا, آپ کو اپنی بھاوی کو سنسکاروں کو دھو کر کے صاف کرنا ہے, نہ کیول اتنا کرنا ہے لیکن بھاوی جیون کے لیے بھی کوئی ایسی روپ ریکھا نردھارت کرنی ہے جس کو اشٹا پورتی کہا جا سکے, چھت پورتی کہا جا سکے. تب اس لوگ آتم کلیان کے لیے کیا کریں گے اس کا تیاری کرنا بھی اسی طرح سے سنگ ہے جس کلپ سادھنا میں آپ آئے ہوئے ہیں. جس کلپنا سادھنا میں آتم پرشکار اور آتم پرشودھن کی پرکریا اس سے بھی زیادہ مہتوپورن ہے, جیسا کہ آپ کو پوجا اور اپاسنا اور جپ اور دھیان کرنے کے لیے بتایا گیا ہے, اس سے کم زیادہ ہی مولیہ ہے, اس لیے آپ اس اور بھی دھیان رکھیں. ایسی میری پرارتھنا سماپت.